बने बाबा तुम साथ, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना बने बाबा तुम साथ,
यही है तमन्ना बने बाबा तुम साथ, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
शांति। आज दूसरा टर्न है बाबा मिलन का, अव्यक्त मिलन। अभी बाबा से मिलन की विधि भी बदलती जा रही है। पहले था साकार मिलन, फिर उसके बाद अव्यक्त मिलन, अभी है अव्यक्त का भी अव्यक्त मिलन। पहले बाबा मिलने आते थे, अभी बाबा का कहना यह कि अभी आप वतन में मिलने आओ। मैं आपसे मिलने के लिए बहुत दफा आ चुका हूं, अभी तुम मेरे पास आओ। तो दिन प्रतिदिन कैसे कैसे बदलता जा रहा है। भगवान से मिलन के लिए संसार में लोग कितने प्यासे होते हैं, कितना भक्ति पाठ पूजा करते हैं, जप तप साधनाएं करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, कई तरह के विधियां अपनाते हैं, लेकिन फिर भी हरदम दूर रहे। चारों तरफ लगाए फेरे, फिर भी हरदम दूर रहे। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने इतनी सुंदर विधियां, इतने अच्छे तरीके बता दिए कि कैसे हम चलते फिरते, उठते बैठते भी बाबा के साथ का अनुभव कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं, उससे कनेक्शन जोड़ के रख सकते हैं। तो ये परमात्मा मिलन के जो दिन है ये भी बहुत प्यारे हैं, ये भी फिर बाद में याद आया करेंगे। क्योंकि जैसे जैसे संसार में माहौल बदलता जा रहा है, वैसे वैसे अनेक प्रकार की परिस्थितियों के चलते पुरुषार्थ की भी हमारी स्पीड उतनी ही बढ़नी ही चाहिए। आज की मुरली में बाबा ने कहा, विदेशी बच्चों से मुलाकात है, भले सरकमस्टांस संसार के दिन प्रतिदिन और बढ़ते जाएंगे, खराब होते जाएंगे, परिस्थितियां अपने विकराल रूप धारण करेंगी, लेकिन अगर तुम बच्चों का अभिमान सही है, बुद्धि का अभिमान और मन बुद्धि क्लियर है, तो तुम सेकंड में ही पहुंच सकते हो। स्थूल विमान की जरूरत नहीं। तो मन बुद्धि की लाइन हमारी कितनी क्लियर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम भगवान से कितना समय मिलन ना पाते। विमान ऊपर में जा रहा है, अगर आगे कुछ कोई चीज टकरा जाती है तो क्रैश हो जाता है और कितना नुकसान हो जाता है, की कमाई सारी चट। उसी तरह से ब्राह्मण जीवन में बाबा ने हम सबको बुद्धि रूपी जो विमान गिफ्ट में दिया है, दिव्य बुद्धि, पवित्र बुद्धि, विशाल बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि, इस बुद्धि को हम कितना क्लियर रखते हैं ताकि एक सेकंड में हम इस विमान से उड़ सकें और वहां मंजिल पर पहुंच सकें। अगर हमारे मन बुद्धि में अनेक प्रकार का कीचड़ भरा हुआ है, रिफाइंड पेट्रोल नहीं है, इधर उधर की व्यर्थ बातें हैं, तो उड़ने के बजाय क्रैश हो जाएंगे, अर्थात बाबा को याद करने बैठेंगे लेकिन दूसरी दूसरी बातें बुद्धि में घूमती रहेंगी, स्वयं को ही फिर अंदर में आत्मग्लानी का भाव पैदा होगा। तो हमें बहुत सुंदर समय मिला हुआ है, संसार की परिस्थितियों को देखते हुए इस समय को भी अगर हमने अभी भी सफल नहीं किया तो फिर हमारे ऊपर ही कितना बड़ा दोष लग जाएगा। एक तो हम स्वयं अंदर ही अंदर दुखी होते रहेंगे, दूसरा जो भगवान ने हमको संसार को कुछ देने के लिए चुना है, कुछ अनुभूति कराने के लिए चुना है, उनको भी हम नहीं दे पाए तो वो सारा बोझ भी हमारे ऊपर चढ़ जाएगा, बोझ लोते रहेंगे, उड़ने के बजाय हम गिरते रहेंगे, नजदीक बैठे हैं साथ साथ चलना है। तो बहुत सारी बातें हैं, तो अभी हम देखेंगे कि अभी जो मिलन चल रहे हैं बाबा के, हमको जहां हम जिस भी स्थान पर रहते हैं वहीं कैसे उसको अनुभव करना है, क्योंकि अभी भले विमान दूसरे नहीं आ रहे हैं या आ भी रहे हैं लेकिन सरकमस्टांस ऐसे कि यहां नहीं पहुंच पाते लोग, तो जहां भी हम रहते हैं वहां कैसे बाबा का अनुभव करें, हम अव्यक्त अनुभूतियां कैसे जीवन में बढ़ाएं, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो माहौल है वो तो और ही गर्माता जाएगा, कम नहीं होने वाला है। आज है जी गवर्नमेंट के नियम बहुत ही टाइट होते जा रहे हैं, वो भी और देख रहे संसार आपस में कैसा उलझा हुआ है, अभी इतना हिंसा बढ़ रही है, इतनी घटनाएं बढ़ रही हैं, धर्म युद्ध की बात जो अभी चल रही है एक हिसाब से संसार में देखा जाए, एक साथ कितना नुकसान हो रहा है, एक छोटी से धरती के टुकड़े के लिए ये सारी लड़ाई चल रही है। हाँ, उसी की बात तो है, कितना छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बाबा ने कहा ना कि एक चिंगारी कब भी हो तो अंदर में सारा तैयारी है, कब चिंगारी फूट जाए को पता नहीं है, अचानक होगा, समय का भरोसा नहीं है, उस दिन था ना साकार मूल्य में, समय का कोई भरोसा नहीं है, प्रकृति बैठी हुई है, प्रकृति ने भी दो तीन पहले दिन शायद कहीं तुर्की में भूकंप आया, कितना जबरदस्त भूकंप आया, वो सामने सीसीटीवी जो कैमरे उसमें रिकॉर्डिंग होती है आजकल, कैसे लोग भाग दौड़ रहे हैं, इधर ऑफिसों में बैठे हुए हैं और वो पंखे हिल रहे हैं और सारा ऑफिस ऐसे ऐसे हिल रहा है, तो प्रकृति के आगे सागर बेबस हो जाते हैं। अब इस संसार में एक दो के ऊपर आरोप लगाना ये ठीक है, लेकिन प्रकृति के ऊपर कौन आरोप लगाएगा, जब सारा सबको नेस्तनाबूद कर देगी, सबको धरती में समा लेगी वो, भगवान पर आरोप लगाएंगे, लेकिन आरोप लगाने का टाइम ही नहीं रहेगा उस समय। जैसे धरती अपना मुंह खोलेगी, सब गर्त में समा जाएंगे, कौन किसको दोष लगाएगा, किस पर कौन केस करेगा। हाँ, वो भी सारी बातें हैं संसार में, जो भी अतीत की बातें बाद में फ्यूचर में कैसे कैसे उगल के सामने आती हैं, तो वो भी देखने में मिलती है। लेकिन ये तो सारी छोटी छोटी बातें, देखा जाए भगवान का तो प्लान बहुत बड़ा है। तो उस प्लान को समझते हुए हमें अपनी बुद्धि को क्लियर रखना है। तो देखेंगे सारे दिन में हमको क्या क्या करना है, ताकि हमारी लाइन क्लियर रहे, और कुछ ऐसे हल्के टिप्स रहे जिनमें हमारी रुचि बनी रहे, और अपनी सेवाओं को देखते हुए, समय को देखते हुए, पारिवारिक जिम्मेवारियों को देखते हुए, सामाजिक जिम्मेवारियों को देखते हुए, जो भी हम कर्म क्षेत्र पर रहते हैं, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए कैसे अनुभूतियों में समाये रहना है। क्योंकि ऐसा नहीं हमको बैठ के इसमें मिलेगा, अभी उस समय चला गया अभी। हाँ, वो भी आएगा जो बाबा ने कहा अंत में, जो शुरुआत में 14 साल हुए तपस्या, अंत में वो ही होगी। तो हाँ जी, 6 मास तो भी लॉकडाउन कितना समय मिला, अभी और संभावना हो सकती है बड़ी। विदेशों में भी ऐसा सुनने में आ रहा द्वारा लॉकडाउन चालू हो रहा उधर, तो जर्मनी में शुरू, तो ऐसे ही संसार में कई कुछ हो रहा है। लेकिन हमको अंदर ही अंदर क्या करते रहना है, ताकि हमारी बाबा से मिलने की जो निरंतर तार जुटी रहे, निरंतर में कोई अंतर ना आए। तो सबसे पहली बात है, हमेशा अपना एरोप्लेन जो विमान है वो हमेशा कैसे रखना है, एवर रेडी रखना है, तैयार। बुद्धि रूपी विमान हमेशा एवर रेडी रखना है, और इस बुद्धि रूपी विमान के अंदर रिफाइन पेट्रोल डालते जाना है, डबल रिफाइन पेट्रोल। उसमें थोड़ा भी किचड़ा ना हो, अगर पेट्रोल में थोड़ा सा किचड़ा होता तो सारा प्लेन क्रैश हो जाता है। तो हमारा किसी के प्रति भी कोई अशुभ भावना, या किसी की कोई हमने नेगेटिव बात देखी हुई है, या स्वयं की ही कोई अपने पास जीवन की बातें जो है वो ही हमको बार बार ये करते रहती हैं, जिनको हमने बाबा के सामने स्पष्ट रूप से अर्पित नहीं किया है, बताया नहीं है, या अपने योग बल से उसको भस्म नहीं किया है, या उसी बात का बार बार चिंतन करते करते हमने पक्का कर दिया हुआ है, तो विमान कैसे उड़ पाएगा। तो इसलिए जो ड्रामा की बातें कही, तो ये हमें बाबा ने बहुत सारे मेथड बताए हुए हैं, जिन मेथडों का हम, जिन विधियों का उपयोग करते हुए हम स्वयं को उड़ता पंछी बना सकते हैं, हम स्वयं का अपना विमान जो सदा एवरेज रख सकते हैं। सारा दारमदार है हमारी स्मृति के ऊपर, हम कितना सजग रहते हैं, सतर्क रहते हैं, जागरूक रहते हैं उसके ऊपर। तो सबसे पहले हमें एरोप्लेन एवरेडी रखना है, बुद्धि रूपी विमान स्वच्छ रखना है एकदम। ऑर्डर मिला सेकंड में गए, उसके लिए सब जो बाबा ने सारे ज्ञान का सार किया है कि देश ही देह के सर्व संबंधों को बुद्धि से भूल, कोई भी संबंध नहीं हमको खींचे, स्वयं का देह भी नहीं खींचे, तो कितनी बड़ी प्रैक्टिस है ये। तो धोखेबाजों की जो दुनिया है बाबा कहते इससे बचो, आज के मूल्य में है ये। और उससे भी धोखेबाज बाबा स्वयं के लिए कहते हैं, आंखें कितनी धोखेबाज है, वो तो दुनिया है, लेकिन एक स्वयं की दुनिया, आंखें बहुत शायती रहे ये, बड़े धोखेबाज है, कब क्या कर बैठती है कोई भरोसा नहीं है। हाँ जी, हाँ, दूर संचार भी कभी धोखा दे सकता है। तो ये देखना है हमका, हमारा जो विमान है कहाँ कहाँ अटका हुआ है, बुद्धि रूपी विमान कहाँ अटका हुआ है, उसको क्लियर करना है एकदम। तो कैसे करना है इसको, उसमें ज्ञान का पेट्रोल, ज्ञान योग का पेट्रोल भरते जाना, भरते जाना, भरते जाना है, तो ये क्लियर होगा। नहीं तो उड़ान भरेंगे और दूसरी तरफ ही पहुंच जाएगा। उड़ाना बार बार उड़ाते रहना है, ऐसा नहीं खड़ा कर दिया उसको, सारे दिन उड़ाते रहना। अभी नीचे तो इस धरती पर आग लगी हुई है, इसलिए नीचे उतर ही नहीं सकते हैं। उतारेंगे कहाँ, उतारेंगे तो कल बताया ना, मिट्टी रूपी ड्रेस नहीं पहननी है, मिट्टी में तो बहुत रह लिए, कल के वरदान में था। अब मिट्टी रूपी ड्रेस छोड़कर चमकीली ड्रेस पहन के रखनी है हमेशा। हाँ जी, हाँ, पानी, हाँ, दूसरे, लेकिन दूसरा प्लेन मिलेगा ही नहीं कोई भी उधर, ऊपर ही ऊपर जो पेट्रोल मिलता है भरने के लिए वो अकेले ही होंगे, अकेले भी मान जाना है, वहां सोचेंगे उससे हेल्प ले लें, उससे हेल्प ले लें, वो क्लास हुई या उसके पॉइंट याद करे कुछ नहीं काम आएगा। इसलिए स्वयं की बुद्धि को हमको भरपूर रखना है कि हमने कितना अपनी बुद्धि में पेट्रोल भर के रखा हुआ है। परम धाम तक पहुंचना है, पूरे विश्व की परिक्रमा लगानी है, उसका चक्कर लगाना है, तो कहां कहां तक हमको अपनी बुद्धि को हमने कहां तक हमने स्वच्छ क्लियर रखा है। इसलिए बाबा ने उस दिन मुरली में कहा ना, आज की मुरली में संपूर्णता की लास्ट टचिंग, और उस दिन मुरली में था कि मन बुद्धि क्लियर हो उसके लिए क्या चाहिए, कैचिंग पावर और टचिंग पावर, और उसके लिए इकोनॉमी। संकल्पों की बचत हम कहां कितना कर रहे हैं, संकल्पों को श्रेष्ठ कैसे बना रहे हैं, संकल्पों की शक्ति, शुद्ध संकल्पों की शक्ति कहां जमा कर रहे हैं, शुद्ध संकल्पों का खजाना हमने कितना भर के रखा हुआ है। तो ये देखना है कि हमारा जो बुद्धि रूपी विमान है ये कितना क्लियर है। एरोप्लेन हमें स्वयं सदा एवरडी रखना है, और दूसरा बार बार क्या करना है, आना और जाना है, ये ड्रिल करते रहना है, आना जाना आना जाना। जैसे घड़ी होती है, घड़ी में बीच में दो बिंदु फ्लिक फ्लिक करते रहते ना, गए आए गए, इतने इतने सेकंड में गए आए गए आए गए आए, तो ये बार बार हमको प्रैक्टिस करनी है। और हाँ, पांच रूप का अभ्यास, और दूसरा बार बार बाबा का आह्वान करना है, क्योंकि अभी हमारे पास फिर भी जो टाइम मिला हुआ है ये हम सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है। बाबा ने उस दिन कहा ना, सौभाग्यशाली बच्चे कौन है जो निर्बंधन है, बहुत बहुत भाग्यवान वो बच्चे हैं, पद्मा पद्म भाग्यवान। तो हम हर एक ब्राह्मण जिसकी बुद्धि में ज्ञान है वो संसार से निर्बंधन है, जो जिसकी बुद्धि में ज्ञान नहीं ठहरा दूसरी बातों को हमने बिठा के रखा वो निर्बंधन नहीं है। भले हम कुमार हैं, संसार को छोड़ के बैठे हुए हैं, माना संसार उन चीजों को जो संसार पतन की ओर जा रहा है उसको छोड़ के हमने ये ऊंच मंजिल पकड़ी है, लेकिन अगर बुद्धि में दूसरी बातों को बांध के रखा मन बुद्धि को तो निर्बंधन नहीं कहेंगे। जो बाबा ने कहा ना उस दिन, जो उस दिन कहा ना बाबा ने कि बांधेलियां भी आगे जा सकती हैं, घर में रहने वाले आगे जा सकते हैं, जिस स्थान पर हम रहते हैं और अपने मन में सारी जिम्मेवारियों को निभाते हुए अपने मन को निर्बंधन बना के रखा हुआ है तो वो उठ सकता है एक सेकंड में। हाँ, स्थान मिलना ये भी भाग्य की निशानी है, वही स्थान भाग्यशाली, सेवा मिलना, स्थान मिलना और संग मिलना, ये भी भाग्य की निशानी है। तो संग वास्तव में खुद निर्माण किया जाता है, एक तो वो पहले की बातें थी, लेकिन वर्तमान समय संघ का खुद हमको निर्माण करना है। ये नहीं सोचे कि हमको संघ श्रेष्ठ मिले तो मैं पुरुषार्थ करूंगा, नहीं, श्रेष्ठ संघ का खुद निर्माण करना, खुद उसकी स्थापना करनी है, अपने आप मिल जाएगा। हमारी अगर जहां कहते हैं जहां चाह वहां राह मिल जाती है, तुम्हारी अंदर की इच्छा कैसी है? हाँ, अगर हमारी अंदर की इच्छा है तो वैसा माहौल अपने आप ही मिल जाएगा। हमारी इच्छा है गपशप मारने की तो नेचुरली है, टाइम होगा हाँ चल पड़े गप मारने, कब बच जाएगा पता नहीं है, बाकी जो बच जाएगी कल मारेंगे गप। तो जैसा हमको माहौल मिलता उसी अनुसार फिर हम दूसरों को प्रभाव डाल सकते हैं, उस माहौल को हमें परिवर्तन करना है। ये नहीं सोचे हमको अभी संग मिले, ज्ञान चर्चा वाले मिले, नहीं, वो टाइम चला गया, अब तो खुद ही निर्माण करना सब कुछ, हमको देख के वो आए। हाँ जी, हाँ सोचते रहे उनसे मिलेंगे तो दो चार बात पूछ लेंगे। जैसे कई दफा हमने देखा नाइट यहाँ क्लासेस होती है मेडिटेशन हॉल में, इतने सुंदर सुंदर क्लासेस होती है, दादियों की होती है, कुछ भी होता है, तो उसके बाद भी कुछ लोग पूछते हैं हमको और क्या पुरुषार्थ करें। अब जो क्लास होनी इतना हाईएस्ट पुरुषार्थ बता दिया, उसको छोड़ के और क्या पुरुषार्थ करें। सार तो सारा ही अपने मन बुद्धि को बिजी रखो कुछ भी काम में, चाहे वो यज्ञ सेवा में हो, चाहे वो मनन चिंतन में हो, चाहे वो साकाश देने में हो, चाहे ज्ञान रत्नों को एकत्रित करने में हो, कुछ भी अपने मन बुद्धि को बिजी रखना है ताकि वो उड़ान भर सके। तो सारे दिन में इसके लिए बाबा का बार बार आह्वान भी करना है। बाबा जब इस धरा पर आए, बाबा कहते अंगे अखरे अर्थात तिथि तारीख को बता नहीं सकता, तो वास्तव में 1936 से ही पहले बाबा तो ब्रह्मा बाबा की भूमि जो भूमि थी उसको तैयार करे थे। जो हम 32 में डायरी बाबा की पढ़ते हैं 1932 की, तो वो डायरी क्या है, वो जैसे बाबा ने उस धनी को तैयार कर दिया पहले से ही, वो तो 32 से काम चल रहा है। ये संगमी बाबा कहते 100 साल का है, कल की मूल्य आने वाले कल की मूल्य के करीब करीब 100 साल का है। अब इस 100 साल में कैसे भगवान के आने का प्रक्रिया बदलती रही है, 69 तक कैसे साकार उंगली में पकड़ के भगवान को ले जाते रहे, घुमाते रहे, उसके साथ खाते पीते बैठते रहे, कितनी मौज मनाते रहे। वो तो पहले उसके पहले की बात, वो तो बाबा ने कहा ना जो ड्रामा में होना वही होना है, वो बाद की बात, अनुभवी रथ चाहिए था। हाँ, बाबा का पहले था नहीं वैसे विचार इस तरह का, लेकिन ये घटना घटित होने के बाद ये हुआ, तो अनुभवी रथ चाहिए था। तो फिर कैसे 69 तक साकार पाठ चला और उसके बाद कैसे सेवाओं की बाढ़ आई, कितनी क्रांतियां घटी जीवन में, कितनी रुकावटें आई यज्ञ स्थापना में, सेवाओं में, बैगरी पाठ चला, कितनी सारी क्रांतियां घट गई, कैसे कैसे मिलन बदलता रहा। और आज हम इस मुकाम पर पहुंचते हैं कि हमको स्वयं हमेशा बाबा को अपने पास ही अनुभव करना है कि बाबा स्वयं मेरे पास में ही है। तो बार बार बाबा का आह्वान करना, आह्वान करना अर्थात उसके बारे में जानना बार बार, वो हमारे प्रति कितने उसके उपकार हैं, कितने उसके हमारे पर रहम बरसा है, वो देखना, उसका आह्वान करना है। आह्वान करना जैसे कोई विदेश में जाता है, हमारा कोई भाई हो या कोई माता पिता हो या कोई भी हमारा प्रियजन विदेश में जाता है, कैसे जब वो आने का उसका टाइम होता है तो कैसे हम उसके बारे में बार बार सोचते हैं। तो बाबा के बारे में बार बार सोचना, यही उसका आह्वान करना है। तो आज भी सारे दिन में बार बार बाबा का आह्वान करना है। और दूसरी बात, बीज रूप अवस्था में रहना, जो हमारा ओरिजिनल घर है, जो हमारी ओरिजिनल अवस्था है, जो हाईएस्ट स्टेज है, हमेशा हमको उस अवस्था में बैठना है। क्योंकि बाबा ने कहा बीज रूप अवस्था में विक्रम बहुत जल्दी बसम होते हैं, क्योंकि दूसरी जो अवस्थाएं हैं अधिकतर फिर भी वो थोड़ी नीचे, लेकिन बीज रूप हमारी अंतिम अवस्था है, 1 सेकंड में हमको सीधा बाबा से टच होके फिर वापस लौट आए। तो आने जाने का जो क्रम बताया है ये भी हमको जारी रखना है। तीसरी बात, हमेशा हमको बाबा की छत्रछाया में रहना है, ये अनुभव करना है हमको चलते फिरते या कर्म करते हुए कि बाबा की छत्रछाया के नीचे मैं चल रहा हूं, विशेषकर आज के दिन। क्योंकि अभी जो हमने पिछले जो मिलन हुआ 18 तारीख वाला, तो हमने देखा हूबहू जैसे पहले थी ना वैसे अनुभूति रही, लेकिन हमारी मेंटेलिटी कैसी होनी चाहिए वो ऊपर निर्भर करता है, कोई फर्क नहीं था। हालांकि हमको थोड़ा और ही ताकत आई उसमें, लगा नवीनता लगी उसमें। हाँ, दूसरी बात, भगवान से मिलने के समय अकेले बैठना है, हमारे आसपास में हमारी जान पहचान का कोई नहीं होना चाहिए, कोई भी नहीं होना, इसलिए अकेले बैठ के वो मजा जो वो अपना ही है, क्योंकि हम अकेले उसमें खो गए हुए हैं। बीच में कोई दूसरा भी आता है तो फिर उतना टाइम तो कट जाता ना, हाँ दूसरा चैनल चालू हो जाता है। तो हमको हमेशा आज जो है चलते फिरते भी, विशेषकर आज जो हम बात कर रहे हैं कि छत्रछाया में अनुभव करना है और बाबा के साथ कन्वर्सेशन करते रहना है, रूरवान करते रहना है, और साथ में गुफा के अंदर बैठे रहना है। गुफा के बाहर निकले तो माया बैठी हुई है, तो ये वृत्ति की कुटिया में अंदर ही बैठ के, या इस कुटिया से निकले तो परम धाम में पहुंच गए, ये हमारा तख्त जो है इस तख्त पर ही बैठे रहना है। गुफा के अंदर अंतर्मुखता की अवस्था में रहना, अंतर्मुखता की गुफा में, तो छत्रछाया में रहना है, बाबा से कन्वर्सेशन करते रहना है और गुफा में रहना है। हाँ, वो आगे आएगा, साक्षी बनेंगे बाद में। नेक्स्ट है, बाबा से आज सारे दिन में दृष्टि लेते रहना बार बार। कहाँ लेंगे दृष्टि? सूक्ष्म पतन में, या हम स्वयं ही अनुभव करें, जैसे बाबा सामने बैठे, जैसे हम कई दफा अनुभव करते हैं, जैसे मेडिटेशन आला है, जैसे बीच का सोफा खाली होता है लेकिन हम फील करते जैसे अव्यक्त बाप दादा वहीं बीच में बैठे हुए, बहुत सुंदर अनुभूति होती है। लेकिन उस सामने हमारी अवस्था भी उस तरह से पहले लंबे समय से तैयार की हुई, तो क्योंकि बाबा वो परम पवित्र सोल है, वो सुप्रीम सोल है, उससे हमको मिलन मनाने के लिए हमारी भूमिका भी तो पहले से होनी चाहिए ना इसे तैयार। कोई नया नया व्यक्ति आ रहा है और उसने अभी अपने अंदर की कमी कमजोरियों को कुछ छोड़ा नहीं है और बहुत बड़ा ऑफिसर है, तो उसकी जो मेंटेलिटी है उसकी जैसी होनी चाहिए तभी हम मिल पाते हैं। अब अगर हमको पढ़े लिखे से मिलना तो हमारा समझने का तरीका तो वैसा चाहिए ना, नहीं तो उसकी बात को कैसे समझेंगे। जैसे डॉक्टर की लिखाई को कौन समझ सकता है, डॉक्टर ही समझ सकता है। वो टेढ़ी मेढ़ी लिखाई मरीज थोड़ा समझेगा इतनी, वो डॉक्टर ही समझ सकता है उसको। तो उसी तरह बाबा भी इतना ऊंचा है तो उसकी बात को, उसकी फीलिंग को, उसके वाइब्रेशन को, उसको अनुभव करने के लिए उसके जैसा बनना पड़ेगा। तो इसके लिए बार बार हमको दृष्टि लेते रहना है, बाबा से दृष्टि लेनी बार, जैसे उस दृष्टि से बहुत सारी एनर्जी निकल रही है और सारी एनर्जी हमारे में समाती जा रही है और हमारी सारी कमी कमजोरियां उस समाप्त होती जा रही हैं, और दृष्टि लेते लेते अपने भी सारी कमी कमजोरियां वो स्वाहा कर देनी है, उसके सामने अर्पित कर देनी है, बाबा को बता देना है। तो दृष्टि लेनी है बार बार। नेक्स्ट है ये सोचना है कि अभी जो समय चल रहा है इमरजेंसी का समय चल रहा है, जब भी कोई घटना घटित होती है इमरजेंसी क्या करते हैं, कुछ सोचते हैं, किसी के बारे में सोचते हैं, उसको बचाने का प्रयास किया जाता है। तो इस समय हमें स्वयं को बचाना है, आग लगी है तो हम ये थोड़ा, बाबा कहते ना कई दफा बाबा मुरलियों में एग्जाम्पल देते हैं, आग लगी है तो ये थोड़ा स्थिति किसने लगाई, क्यों लगाई, कब लगी, तब तक तो पूरा खत्म हो जाएगा। तो अभी जीवन में जो कुछ हो गया वो खत्म हो गया, वो हम ये क्यों सोचते रहे, उसने ऐसे क्यों कहा, उसको ऐसे नहीं कहना चाहिए था, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये छोड़ दो। अभी स्वयं के ऊपर इमरजेंसी आन पड़ी है, हमको जो करना है वो करना अभी। तो इमरजेंसी हमेशा रखना, अभी इसमें इमरजेंसी का चल रहा है और इमरजेंसी में सारा सरकार की प्रक्रियाएं भी बदल जाती हैं, कोई किसी का सुनता नहीं है, फिर उधर रेड लाइट होती है, ऑपरेशन थिएटर, बाबा ने बताया ना मैं हूं अविनाशी सर्जन, सारी दुनिया का ऑपरेशन करने आया हूं। तो हम स्वयं भी ऑपरेशन करना है, इमरजेंसी में बैठे हुए हैं, चीरफाड़ चल रही है। तो ये हमेशा हमको सारे दिन में याद रखना है कि अभी हम इमरजेंसी में हैं। नेक्स्ट है फरिश्ता बनकर रहना, डबल लाइट, सारे दिन में चलते फिरते भी, विशेषकर हमने देखा जब हम चलते फिरते जिस समय हमको स्मृति रहती है उसमें बहुत अच्छा फील होता है, और जैसे भी स्मृत होते हैं तो बाद में गिल्ट क्वेश्चन होते कि हमारे पास हाथ से टाइम निकल गया है। हमने रामबाई को देखा कई बार, आदमी को सच में देखने से आदमी बहुत कुछ पढ़ता है, सीखता है, शाम को योग के बाद या योग के टाइम में भी, यहां से सुदर्शन के टाइम में इधर एकदम लाइट अनुभूति होती थी कि सचमुच वो कौन सी अवस्था है उनकी, बोलने की जरूरत नहीं है, चाल ढाल से पता पड़ जाता है। तो सारे दिन में फरिश्ता बनकर रहना है, डबल लाइट बनकर रहना है, उड़ते रहना है, वो ड्रेस मिट्टी वाली छोड़ देनी है, रक्त रंजित ड्रेस छोड़ देनी है, बदबूदार ड्रेस छोड़ देनी है जो 1980 की मुरली में था। और नेक्स्ट अपने को आज सारे दिन में गेस्ट समझना है, बाबा कौन है, हाईएस्ट होस्ट और गोल्डन गेस्ट, आज की मुरली में वो हाईएस्ट होस्ट है और गोल्डन गेस्ट है। तो गोल्डन गेस्ट इस धरा पर आने वाला है तो मैं भी उसके साथ उसकी तरह मिलने के लिए तैयार हूं ना, तो हम भी गेस्ट रूप में, गेस्ट अर्थात मेहमान जिसका कहीं किसी से कोई लगाव नहीं है, कोई आसक्ति नहीं है, अनासक्त है वो, उसको पता मैं थोड़ी देर के लिए आया हूं, तो हम भी इस धरा पर थोड़े समय के लिए हैं। तो सारे दिन में स्वयं को हम मेहमान समझेंगे तो महानता के लक्षण हमारे में आते जाएंगे। तो गेस्ट समझना है। नेक्स्ट है हम सो हम, ये स्मृति हम कौन थे, हमको बाबा ने क्या याद दिलाया, कौन कौन सी स्मृति दिलाई, कितने ऊंचे थे, आज की मुरली में है, तुम कोटों में कोई हो, कोई में कोई, और उसमें भी कोई श्रेष्ठ है और कोई श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, कितने गहरे गहरे पॉइंट हैं, पहले कोटों में कोई, कोई में कोई, उसमें भी कोई श्रेष्ठ है, उसमें भी कोई श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, कितनी गहरी बात है। मन बाबा हमको कितना हाईएस्ट स्टेज पर लेकर जा रहे हैं, लेकिन हम फिर भी बार बार खींच के वापस आते हैं। तो स्मृति रहे तो हम नेचुरली उस अवस्था का अनुभव कर सकते हैं, उस अव्यक्त अनुभूति में खो सकते हैं। और होम क्वारंटाइन में रहना है, होम क्वारंटाइन अर्थात बाहर के चक्कर को छोड़ देना है, वृक्ति की कुटिया में बैठे रहना है, अपना जो घर है उसी के अंदर रहना है, बाहर बहुत तांग जांग कर लिया, खिड़कियां बंद कर देनी है, अभी बाहर तो आग लगी पड़ी है, हिंसक अपराध बढ़ रहे हैं, बाहर वायरस चल रहा है, खिड़कियां खोली तो वायरस घुस जाएगा, कौन से व्यर्थ के वायरस घुस जाएंगे, मैंपन के, मेरेपन के, अनेक प्रकार के वायरस घुस जाएंगे और वो तबाह करके रख देंगे। तो होम क्वारंटाइन रखना है, हम सो हम का मंत्र इसकी स्मृति में रहना है। और नेक्स्ट है इग्नोर, कौन कौन सी बातें इग्नोर कर देनी है, अभी अब टाइम ही नहीं है अभी उन बातों के लिए, छोड़ देना उनको, बहुत कर ली। क्या मिला हमको? कुछ नहीं तो मिला, स्वयं का सब कुछ गवा दिया, स्वयं की टिप्पणी घिस गई है यहां तक तो हालत पहुंचने में। इग्नोर नहीं किया कोई बातों को, तभी तो अवस्था हमारी ऐसे डावाडोल होती रहती है। तो बहुत सारी बातों को इग्नोर करना है, स्वयं को देखना कौन कौन सी बातें इग्नोर करनी है, और स्वयं के पुरुषार्थ में कुछ प्रतिज्ञा करनी है, जिद करनी है, अर्थात वो प्रतिज्ञा जो हम कर पाए, वो प्रतिज्ञा नहीं जो कर पाते हैं। कुछ प्रतिज्ञाएं होती हैं हम कर लेते हैं, ये करके ही छोड़ेंगे, लेकिन उसके लिए बहुत दम चाहिए, ताकत चाहिए। हाँ, वो प्रतिज्ञा करनी है, लेकिन धीरे धीरे पहले छोटी छोटी प्रतिज्ञा करनी है। आज सारे दिन में हमको ये थोड़ा सा भोजन के बाद 15 मिनट योग में बैठेंगे, ऐसे छोटे छोटे प्रतिज्ञा जो हमारे लिए हितकारी हो, जो हमारे पुरुषार्थ में पंख लगाए, उड़ान भरे। योग के बाद, भोजन के बाद 5 मिनट बाबा को शुक्रिया करेंगे, शुक्रिया योग, थैंक्स योगा, वो करेंगे ऐसे छोटी छोटी। मुरली क्लास के बाद हाँ 5 मिनट योग में बैठेंगे। हाँ, ऑफिस में सेवा करने से पहले 5 मिनट योग में बैठेंगे। ऑफिस में सेवा छोड़ने से पहले 5 मिनट योग करके जाएंगे। बाबा को सारे दिन की सेवा का समाचार सुना के जाएंगे योग में, ऑफिस बंद करने से पहले, या कहीं भी हम कर्म क्षेत्र में, तो देखेंगे हम हल्का रहते हैं। नहीं तो वही वही बातें चिंता चलती रहती है, और अगर हमारी कहीं गलती तो बाबा टच करा देता उस चीज को भी। तो इग्नोर करनी है, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। फिर नेक्स्ट, किंगडम को याद करना है। बाबा ने कहा ना, अपने भविष्य राज्य को भी याद करो, लक्षण आते जाएंगे वो। जैसे बाबा कहते फोटो जेब में रहना चाहिए लक्ष्मी नारायण का, तो हम पासपोर्ट लेने के लिए आए हैं, पता है ना, पासपोर्ट आज है स्वर्ग के अधिकारी, अधिकार प्राप्त करने के लिए आए हो। तो हमको अपना भी लक्ष्य याद रखना हमेशा, किंगडम। और कर्म करते, जैसे कर्म करते निमित्त न्यारे प्यारे, कर्ण करावन हार करवा रहा है, बड़े हल्के होके करना है, तो टेंशन नहीं लेने की भी, टेंशन तो बहुत सारा ले लिया अभी, अटेंशन देके कर्म को करना है, कर्ण करावन हार, उस कर्म का प्रभाव हमारे पर ना पड़े। चाहे वो कर्म हम बड़ों के कहने पर करें, जैसे आज बाबा ने कहा बड़ों को भी तकलीफ नहीं देनी है सेवा में, तो हम उस तरीके से, हमारे कारण किसी के ज्यादा विचार चल रहे हैं, अगर चल रहे हैं तो वहां हमको देखना है कि हमारे से कौन सी गलती हो रही है, क्यों हम हमारी ही सेवा दूसरों को भारी बना रही है। ये तो सेवा तो दुआओं तंदुरुस्त रहने का साधन है, आय का स्लोगन है, तंदुरुस्ती का साधन है, ये तो दुआएं प्राप्त करने का साधन है। तो किंगडम को यह करना, और दूसरा अपने लक का चिंतन करना है, वाह हमारा कितना बड़ा भाग्य है, स्वयं भगवान हमारे ऊपर शत्रशाह बन के आ चुका है, हमारे ऊपर उसकी कृपा बरस रही है, वो हमारा खुद अपना हो गया, भाग्य विदाता अपना हो गया। उस दिन बताया ना, इसमें किस लिए मिला है, स्वयं को तपाने के लिए मिला, तपस्या के लिए मिला हुआ है, तो स्वयं भगवान से मिलन मनाने के लिए मिला हुआ है, सारे कल्प कल्प का भाग्य जमा करने के लिए मिला हुआ है। भाग्य की कलम उसने हमारे हाथ में पकड़ा दी है, तकदीर की तस्वीर बनाने के लिए उसने हमें बता दिया, दो विशेषताएं दे दी उसने, नयन और मुस्कुराहट। तो सारे दिन में अपनी तकदीर की तस्वीर को कितना सजाने संवारने में लगे हुए हैं, या कि दूसरे की तस्वीरों को एकत्रित कर रहे हैं अपने मन बुद्धि में, दूसरे की तस्वीरों का संशोधन करने लगे हुए हैं जी, उसी से वैल्यू बढ़ेगी अपनी तकदीर की तस्वीर को बनाने से, जो विशेषताएं हैं दो। तो लक का चिंतन करना है। फिर नेक्स्ट है, हम मर्जीवा हैं, सारे दिन में याद रखना है हम मर्जीवा हैं, जीते जी मरने की मौज में, उस दिन बताया था 13 नंबर पॉइंट, जीते जी मरने की मौज में रहना है। हम संसार से मर चुके तो संसार कैसे याद आएगा, जीते जी मरने की मौज। फिर नेक्स्ट है, निराकारी स्थिति में रहना है, जो हमारा ओरिजिनल स्वरूप है, बाप है निराकार तो हम बच्चे भी निराकार हैं। नेक्स्ट है, ओके सदा ओके, किसी से कोई शिकायत नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई गिला शिकवा नहीं तो शिकायतों से चित्त भरा हुआ है तो सारी शिकायतें खत्म। बताया ना, जो ड्रामा में जिसका जैसा पार्ट है फिक्स है वो, उसके लिए हाँ छोटे ड्रामा में हम अपने को चेंज कर सकते हैं, दूसरों को चेंज करने का प्रयास नहीं करना। हाँ, अपने को चेंज करके दूसरों को चेंज करने की प्रेरणा स्वयं मिलेगी किसी को, लेकिन स्वयं हम सोचेंगे ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ड्रामा ऐसा ही नहीं होना चाहिए, वैसे होना चाहिए, सारी शिकायतों से ऊपर शुक्रिया करें, जो हो रहा अच्छा हुआ, जिसने हमको कुछ अच्छा रास्ता बताया उसका भी शुक्रिया, जिसने नहीं बताया उसका भी शुक्रिया, और जो हमको दुख दे रहा उसका भी शुक्रिया। कम से कम हमारी अवस्था को तो परिपक्व कर रहा ना, जिसमें अशांत हुए उसने शांति का, उसकी दृष्टि ने शांति दी, उसके बोल ने हमको मुंह बढ़ाया उसका भी शुक्रिया। हर चीज का शुक्रिया करना, प्रकृति का भी शुक्रिया, परिस्थितियों का, सर्दी गर्मी सब का शुक्रिया, किसी ने भटकाया उसका भी शुक्रिया। कम से कम बाद में चेतना तो जागृत होगी ना कि उसके भटकने से कितने हमको नुकसान हुआ। तो हर चीज का शुक्रिया। शिकायतों से भरा हुआ चित, उसके अंदर भगवान का प्यार कैसे भरेगा। तो सब शिकायतें आज से समाप्त, नो कंप्लेंट, कोई कंप्लेंट नहीं किसी से, नो क्वेश्चन नो कंप्लेंट। राजगुप्त है ना ड्रामा के 21 राज, और लास्ट में हमेशा हमको आज सारे दिन में जो मुख्य संब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है प्यूरिटी, तो सारे दिन में हमको ये भी अनुभव करना है कि मैं प्यूरिटी के शावर के नीचे स्नान कर रहा हूं, पवित्रता का सागर ऊपर से निरंतर बरसात बरस रही है, और मैं आत्मा नीचे बैठी हुई हूं, और उसकी संपूर्ण पवित्रता मुझ में समाती जा रही है, पूरे ब्रह्मांड की प्यूरिटी हमारे में समाती जा रही है, पूरे ब्रह्मांड की एनर्जी, ब्रह्मांड की शक्ति हमारे में समाती जा रही है। वास्तव में ब्रह्मांड की सारी शक्ति तो पहले हमारे अंदर ही मौजूद है, लेकिन विस्मृत हुए पड़े हैं, ढूंढ रहे हैं बाहर, भगवान ने यहीं रख दी हुई है लेकिन ढूंढने में बाहर लगे हुए है ना। एक कहानी कि किसी की कोई चीज गुम हुई, किसी ने बोला कहां रखनी है, तो बोला उसके मन के अंदर रख दो, बाहर ढूंढ नहीं पाएगा वो। वो ही आ रहा था कि हमारे तकिए के नीचे और हम ढूंढ रहे हैं इधर उधर सारी चीजें। तो ये सोचना सारे दिन में कि ब्रह्मांड की सारी प्योरिटी, परम धाम की सारी शक्तियां, परम धाम की सारी एनर्जी, शांति धाम की सारी शांति, निर्वाण धाम की सारी वो जो वाणी से परे जाने की अवस्था है, वो सारी हमारी बुद्धि में वृत्ति में भगवान सारी बरसा रहा है। वो सारी जैसे एक बहुत बड़ी एक झोली भर के ले आया वो, और हमको डुबा दिया उसमें सारा। बताया था ना उस दिन ज्ञान की बरसात में भीगते रहो, ज्ञान योग में आत्मा को डुबो के रखो, 6 नंबर पॉइंट 7वां। तो सारे दिन में हमको ये प्रयोग करने हैं, बहुत सारी बातें हैं लेकिन करना तो हमको खुद की ही है। तो हमको ये प्रभु मिलन का सुख अनुभव करना है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा, कब बनेंगे बावने, आज की मुरली में बावनेंगे यही सोचो कब बनेंगे, करना ही है, बनाना ही है, प्रतिज्ञा करो अपने से, आप नहीं बनेंगे तो कौन बनेगा। तो ये समय हमारे हाथ से कहीं निकल ना जाए, इतना सुंदर समय है और इसको हम गंवा दे तो पहली बात एरोप्लेन सदा एवर रेडी रखना है, बुद्धि रूपी विमान सदा क्लियर रखना है, और बाबा का बार बार आह्वान करना है, और दूसरा बीज रूप अवस्था में स्थित रहना है, बार बार ऊपर जाना है, अशरीरी का अनुभव करना है, और तीसरा छत्रछाया में रहना है, केव गुफा में रहना है, और साथ में कनेक्शन जोड़ के रखना है, किसी भी तरीके से हमारा कनेक्शन टूटने ना पाए। तोड़ने का तो बहुत प्रयास करेंगे, कोई भी कर सकता है, स्वयं के पुराने संस्कार ही कनेक्शन को तोड़ने का काम कर सकते, दूसरे को छोड़ दो स्वयं के ही, दूसरे वो वास्तव में दूसरा कोई तोड़ता नहीं है, हम ही स्वयं के कनेक्शन को तोड़ने के निमित्त बनते हैं, क्योंकि दूसरे को हमने आने क्यों दिया अपनी बुद्धि के अंदर, संबंध संपर्क में तो आ रहे हैं हमारे, लेकिन अंदर हमने क्यों आने दिया, रिमोट कंट्रोल हमने दे रखा है इसका मतलब। तो कनेक्शन को हमको हमेशा जोड़ के रखना है। नेक्स्ट, दृष्टि लेते रहना बाबा से, बार बार दृष्टि लेनी है, उस दृष्टि से क्या क्या मुझे मिल रहा है वो देखना है, क्या क्या अनुभव करना है। नेक्स्ट, दृष्टि के बाद इमरजेंसी लगी पड़ी है, अभी याद रखना है समय कौन सा चल रहा है, संसार में भी इमरजेंसी का टाइम चल रहा है, तो इमरजेंसी में हमको क्या करना है, और संकल्पों की इकोनॉमी करनी है, बहुत संकल्पों की एनर्जी वेस्ट कर दी हमने। नेक्स्ट, फरिश्ता डबल लाइट बन के रहना है, हमेशा उड़ते रहना है। नेक्स्ट, अपने को गेस्ट समझना है, हम भी गेस्ट हैं और हाईएस्ट होस्ट और गोल्डन गेस्ट हमारे सामने आज मिलने आया, हमारे घर में मिलने आया। होस्ट माना घर का जो अधिकारी होता है, होम से होस्ट, तो संयोजक, और गोल्डन गेस्ट आया हो तो उससे मिलने मनाते रहना है। फिर नेक्स्ट है हम सो हम का मंत्र हमें याद रखना है, भागते बाजोली का खेल खेलते रहो। और नेक्स्ट है क्वारंटाइन में रखना अपने को, होम क्वारंटाइन, कुटिया में रहना है और कौन कौन सी बातें इग्नोर करनी है, इग्नोर करनी है, अपने से जिद करनी है अर्थात कोई प्रतिज्ञा करनी है। नेक्स्ट किंगडम को याद करना है और कर्म करते हुए भी निमित्त भाव रहे, हल्के रहना, न्यारे पैर, कराने वाला करा रहा है, हुक्म ही हुक्म चला रहा है। अपने लक का चिंतन करना है, कितना बड़ा भाग्य है। नेक्स्ट मर्जीवा है, ये मर्जीवा जन्म है, हमारा द्विज्य अद्वैत है, तो ये भी स्मृति में रखना है। नेक्स्ट है सदा निराकार स्थिति का अभ्यास करना है, उसके बाद ओके, कोई शिकायत नहीं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं, सब कंप्लेंट खत्म, कंप्लेंट बॉक्स खत्म, और लास्ट में हमेशा प्योरिटी के शावर के नीचे, पवित्रता के सागर के नीचे स्वयं को स्नान कराते जाना है। अपने अंदर वो एनर्जी बननी है, परम धाम की सारी शक्तियां स्वयं में अनुभव करनी है। हाँ जी, मैल निकलती जाएगी, शाम तक एकदम सांवरे से गोरा बन जाए। ओम शांति।
हमें तो